दिन भर 9 अक्टूबर दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमेरिका में डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन के साथ दूसरे डिबेट से पहले रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी। विवादित वीडियो के बाद ट्रंप की जगह नए उम्मीदवार की मांग।
I want to express on the behalf of myself and my party how much we love all the people in this country.
लखनऊ में मायावती की रैली में भगदड़ में दो लोगों की मौत, मायावती ने विपक्षी दलों को घेरा।
श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था जिनके पास रहने के लिए अपने मकान नहीं है उनको दो कमरों के पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे।
संडे दिन भर में मिलिए नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा से, जिन्होंने इंसाफ के लिए 14 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। रिपब्लिकन पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ट्रंप के साल 2005 के उस वीडियो को लेकर नाराजगी जाहिर की है जिसमें वो महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने भी ट्रंप की आलोचना की है। ट्रंप इस वीडियो के लिए माफी मांग चुके हैं। इराक की राजधानी बगदाद में एक बम धमाका हुआ है। धमाका जिस जगह हुआ वहां शिया समुदाय के लोगों की सभा हो रही थी। धमाके में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। धमाके की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस्लामिक स्टेट ने इराक के कई इलाकों से अपना नियंत्रण खो दिया है जिसके बाद से उसने बगदाद में कई धमाके किए हैं। हैती में मैथ्यू तूफान में जान गंवाने वाले लोगों के लिए देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। पिछले मंगलवार को हैती में आए तूफान की वजह से कम 900 लोगों की मौत हो गई। राहत काम में लगे लोगों का कहना है कि स्थिति गंभीर है, खाना पानी और शरण स्थल के लिए मदद की जरूरत है। यहाँ हैजा भी एक बड़ी समस्या बन गया है। हैती में हैजे से करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मानवाधिकार सहायता एजेंसी कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज के लिए काम करने वाली बैथ कैरोल कहती हैं, जिन 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है खाना पानी और रहने की जगह। कई लोग बाहर हैं, कई लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। हमने हैजे के मरीज देखे हैं। हमें एक नर्स मिली, वो बता रही थी कि अब तक उनके क्लिनिक में हैजे के 60 मामले सामने आ चुके हैं। ये थे बैथ कैरोल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण पूर्वी तुर्की में एक पुलिस स्टेशन के करीब हुए कार बम धमाके में 8 तुर्की सैनिकों की मौत हो गई। कई सैनिकों और आम लोगों के घायल होने की भी खबर है। सरकारी मीडिया ने इस धमाके के लिए कुर्द चरमपंथी संगठन PKK पर आरोप लगाए हैं। ये धमाका ईरान और इराक की सीमा के साथ लगते तुर्की के सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। चेचनिया में सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने 8 चरमपंथियों को मार दिया है। इस गोलीबारी में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। गोलीबारी तब शुरू हुई जबकि 2 कारों में सवार बंदूकधारियों को चेक पॉइंट पर रोका गया और वो नहीं रुके। अधिकारियों का कहना है कि बंदूकधारियों की चेचनिया में हमले करने की योजना थी। सीरिया के एलेपो में सरकार समर्थित सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीरिया सरकार समर्थित सेना सड़क के जरिए विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की तीसरी सभा दिन भर में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। दिन भर का सीधा प्रसारण। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नित नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम में वर्षों पुराना विवादित वीडियो सामने आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई रिपब्लिकन नेताओं के विरोध के बाद अब पूर्व विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति हरगिज नहीं बनना चाहिए। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
अमरीकी राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि वर्ष 2005 में कही उनकी बात 11 साल बाद उनकी राह में रोड़ा बन सकती है। साल 2005 के विवादित वीडियो के सामने आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता ट्रंप से किनारा करने लगे हैं। विरोध करने वाले रिपब्लिकन नेताओं में अब राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार सेनेटर जॉन मैकेन और पूर्व अमरीकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस का नाम भी जुड़ गया है। कोंडोलीजा राइस ने एक ट्वीट करके कहा है,
बहुत हो गया, डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, उन्हें अपना नाम वापस लेना चाहिए। एक रिपब्लिकन के नाते मैं ऐसे व्यक्ति का समर्थन करूंगी जो धरती पर सबसे महान लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पर बैठने लायक हो।
ये थे पूर्व अमरीकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस के शब्द। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार मिट रोमनी ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके विवादित वीडियो के लिए आड़े हाथों लिया।
I want to express on the behalf of myself and my party how much we love all the people in this country, regardless of gender or ethnicity.
ट्रंप ने जो भी कहा है मैं उससे बहुत आहत हूँ। ये सभी महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी पोतियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपमानजनक बात है। हम सभी को ऐसी बातों का विरोध करना चाहिए और उन सिद्धांतों के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए जिन्होंने अमरीका को दुनिया का महान देश बनाया।
मिट रोमनी के शब्द। वहीं अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि मीडिया और सत्ता पक्ष यही चाहता है कि वो दौड़ से बाहर हो जाएं, पर कभी भी राष्ट्रपति पद की दौड़ से वो बाहर नहीं होंगे। ट्रंप ने कहा कि वो अपने समर्थकों को झुकने नहीं देंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार और न्यूयॉर्क के मेयर रूडी ग्यूलियानी कहते हैं कि ट्रंप का विरोध कोई नई बात नहीं है।
They largely didn't support him in the first place, so it's not so much of a surprise. If you look at it, they were all Republicans.
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये वही रिपब्लिकन हैं जो इससे पहले भी ट्रंप के समर्थन में नहीं थे और हमेशा उनके विरोध में रहे हैं। और देखा जाए तो पूरी लड़ाई बाहरी बनाम अंदर के लोगों की है। ट्रंप एक प्रचलित उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ बोलने वाले ज़्यादातर लोग सत्ता पक्ष से हैं। मैं इस पूरे मामले को सिर्फ एक ही ढंग से देखता हूँ। अगर आप सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो ट्रंप को वोट दीजिए।
न्यूयॉर्क के मेयर रूडी ग्यूलियानी के शब्द। दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने महिलाओं के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी को भयावह बताया और कहा कि ऐसे इंसान को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया जा सकता। रिपब्लिकन पार्टी के कई और नेताओं ने ये मांग की है कि ट्रंप की जगह एक समझदार और जिम्मेदार इंसान को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। कई मीडिया जानकारों के मुताबिक इस विवादित वीडियो की वजह से ट्रंप के चुनावी अभियान को भारी झटका लगा है और उनकी हार की आशंका बढ़ गई है।
विवादित वीडियो के बाद अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ रही हैं मुश्किलें। रिपोर्ट सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव। और लगे हाथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वीडियो के विवाद के साए में कल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार यानी डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच दूसरा डिबेट, दूसरा वाद विवाद होने वाला है। इस डिबेट से जुड़ी खबरें आप bbchindi.com और कल सुबह के रेडियो कार्यक्रमों में सुन सकते हैं।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब रुख कर रहे हैं भारत का, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशी राम की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बड़ी रैली को संबोधित किया, जहां भगदड़ मचने से दो लोग मारे गए हैं। रैली में पार्टी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं लखनऊ में हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र।
बहुजन समाज पार्टी की रैली वैसे तो पार्टी के संस्थापक कांशीराम को याद करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन मकसद था आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाना। और उसे दिखाने में न तो पार्टी ने और न ही मायावती ने कोई कमी की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जहां जमकर भीड़ बटोरने का काम किया, वहीं मायावती ने राज्य में तीनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पार्टियों को निशाने पर लिया। केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने आरोप लगाया कि उसने 2.5 साल के शासनकाल में कोई भी वादा पूरा नहीं किया। मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना उन्हीं के अंदाज में की।
लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए अपने मकान नहीं है, कि सरकार बनते ही उनको दो कमरों के पक्के मकान बना कर दिए जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में एक भी किसी गरीब व्यक्ति को केंद्र सरकार की ओर से क्या आपको पक्का मकान फ्री मिला है? मैं समझती हूँ कि नहीं मिला है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जब से केंद्र में एनडीए सरकार आई है, तब से दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। मायावती ने एक बार फिर आशंका जताई कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ पार्टियां यूपी में दंगे करा सकती हैं। उन्होंने यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति इस कदर खराब है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।
जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज नहीं, बल्कि यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, आपराधिक, अराजक, सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों का ही जंगल राज चल रहा है। और खासकर यहाँ घटित हुए मुजफ्फरनगर, दादरी, मथुरा व बुलंदशहर कांड इसी के ही मुख्य परिणाम है।
मायावती ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और खासकर मुस्लिम मतदाताओं से अपने मतों को खराब न करने की सीधे अपील की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में बीजेपी को हराने में सिर्फ बीएसपी ही सक्षम है। मायावती के भाषण के बाद भीड़ तितर बितर होने लगी और उसी दौरान मची भगदड़ में दो महिलाओं की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। इस रैली में राज्य भर से लोग जुटे थे और उन्हें लखनऊ तक लाने के लिए कई बसें और ट्रेनें तक बुक कराई गई थीं।
लखनऊ में मायावती की रैली में मची भगदड़ में दो लोगों की मौत और इस रैली में मायावती ने विपक्षी दलों को घेरा। रिपोर्ट सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र। और अब बात 14 साल पुराने नीतीश कटारा हत्याकांड की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विकास यादव और विशाल यादव को 25-25 साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हमारे सहयोगी विदित मेहरा ने नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा से बात की और 14 साल चली अदालती लड़ाई और इस मामले से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की। जी हाँ, संडे दिनभर में आज हम आपको मिला रहे हैं नीतीश कटारा की माँ नीलम कटारा से।
एक केस जो कि कई सालों से लड़ा जा रहा था, जिसकी हियरिंग, जिसकी प्रोसीडिंग्स हम सब ने देखी, केस चलता रहा, अब फाइनली एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया। ये केस था नीतीश कटारा मर्डर केस। और आज मेरे साथ में है नीतीश कटारा की ब्रेव मदर नीलम कटारा। अब सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि वर्डिक्ट क्या है और आपने कितनी मेहनत की इस वर्डिक्ट के लिए।
फाइनली जो वर्डिक्ट आया वो ये था, हाई कोर्ट ने कहा था कि लाइफ विद नो रेमिशन 25 साल तक, और उसके संग 10 साल उनको दिया गया था कॉन्स्पिरेसी के लिए जो उसके साथ रन करना था, और 5 साल और थे साक्ष्य डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो कुल 30 साल था विकास का और उनका जो एसोसिएट था उसके लिए कुल 25 साल था। तो हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में और अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपहोल्ड किया कि विकास का जो 25 साल का सेंटेंस था और उनके एसोसिएट पहलवान का 20 साल का, जो उन्होंने फ़र्क किया वो टेक्निकल रीजंस थे कुछ कि टर्म सेंटेंस के बाद हाई कोर्ट ने दिया है 5 साल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस तो वो नहीं हो सकता, तो उन्होंने वो भी उसी में सॉर्ट ऑफ सब्स्यूम कर दिया, कंकरेंट कर दिया। तो इन इफेक्ट 5 साल कम हुई, बट जो मुझे जिस बात से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है वो ये है कि हाई कोर्ट ने बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये हत्या जो है ये झूठी शान के लिए हुई है, ऑनर किलिंग जिसे कहते हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा इस संदर्भ में अपना वक्तव्य दिया है जो मैं सोचती हूँ एक लैंडमार्क है और दिखाता है कि इसको अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा।
14 सालों से आप एक तरह से मैं कहूँगा कि दो लाइफ जी रही हैं। एक तरफ आप कोर्ट में जा रही हैं, हियरिंग सुन रही हैं, उसके बाद घर में आप अपने छोटे बेटे और जो भी आपकी लाइफ है, किस तरह से तालमेल बिठा रही थी आप? कभी थकी आप?
क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ कोर्ट के अराउंड घूम गया था। जब ये केस शुरू हुआ था तो मेरे हस्बैंड, शायद बहुत लोगों को पता नहीं कि मेरे पति को एमियोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस थी जो कि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, और वो शुरू हुई थी, वो मैनेज कर रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, हम लोग हॉलीडेज़ ले रहे थे, और ये नीतीश का खासतौर पर ये था कि मॉम निकल आती है, सब हर बीमारी का इलाज निकल रहा है, तो मैं तो लड़ूंगा, अगर आप मेरे संग लड़ेंगी तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं अकेले लड़ूंगा, मगर मुझे लगेगा कि मेरी माँ बहुत कमज़ोर है, अगर आप कमज़ोर पड़ गई, अदरवाइज लड़िए, वी हैव टू कीप हिम गोइंग और आई एम श्योर कि निकलेगा इलाज। और इस उसके संग वो चीज़ थी, पर उसके बाद सडनली नितीश डिसअपीयर्ड। सो पहले 18 महीने बहुत बुरे थे और शायद उसने ताकत दी आगे कि ये इतने बुरे थे कि अब इससे अच्छा ही हो सकता है, तो आई यूज टू मैनेज। मगर हाँ, सब चीज़ केस के अराउंड थी। 15 साल से फैमिली में लोग नाराज़ हो जाते थे, किसी की भी शादी, क्लोजेस्ट रिलेटिव की शादी, हाँ मैं आऊँगी मगर अगर मेरा केस लगा हुआ तो मैं नहीं आऊँगी। हर हियरिंग पे जाना और बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मुझे लगा कि मुझे पता नहीं चलता, कोई सच नहीं बोलता, तो इसलिए पूरी लाइफ के लिए ये केस के पीछे लगा रहा। इट्स अ सैड थिंग, मेरे लिए नहीं, मगर कैसे कोई आदमी लड़ सकता है न्याय के लिए इस देश में? हर आदमी तो ऐसा पागलपन से नहीं लड़ेगा ना।
नीतीश जब आपके साथ थे, आपकी जिंदगी खुशहाल, उनके बाद जाने के बाद आप भागा दौड़ी में लगी रहीं, पहले के जो साल आपने गुजारे उनके साथ, आपने अपने बेटे को बड़ा होते देखा, कौन सी चीज़ है नीतीश की जो आप याद करती हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा जो आपको याद आता हो?
देखिए, पहला बच्चा था तो वो यू नो हर चीज़ का एंथुजियाज़म होता है, चाहे वो फैमिली एल्बम बन रही है, मतलब उसकी एल्बम अलग बन रही है, पूरी है एल्बम पे, बिकॉज मेरे हस्बैंड को फोटोग्राफी का शौक भी था, तो सब कुछ पहला स्टेप, पहला ये, पहला वो था। फिर मैं दूसरा चाइल्ड केम, तो दोनों बच्चे संग संग होते थे, 2.25 साल का फ़र्क था, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया और बहुत ही हंसमुख बच्चा था। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ड्राइविंग का उसको क्रेज़ था, तो वो हम लोग को लेके जाता था। इनफैक्ट वो अपनी फ्रेंड्स कि बड़ा हो गया था तो फ्रेंड्स की मदर्स को भी ले जाता था, मुझे पता भी नहीं होता था कि जी को वृंदावन जाना है या कहीं, तो हम बोलते थे कि नहीं ये क्यों, कहेंगे नहीं हमारा बेटा चलाता है तो हम लोग घबराहट होती है। नीतीश अगर तेज़ भी चलाता है तो इतने कॉन्फिडेंस से चलाता है कि हम लोग आराम से बैठ के जाते। एंड बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, हर चीज़ का मजाक, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव था छोटे भाई के लिए, छोटा ही था, ही वॉज ओनली 23, और मुझे लगता है कभी कभी कि शायद बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उसने ली हुई थी अपने ऊपर, और बट हर चीज़ हंसते हंसते मजाक करते करते, दैट इज़ द बेसिक थिंग। उसके दोस्त भी वही याद करते हैं कि हमारे सारे ग्रुप में से ही वॉज द वन जो कि ड्रिंक नहीं करता था, बट वो हर पार्टी का सेंटर होता था, फन होता था, जोक होता था, तो मेरे ख्याल से दैट इज़ इट, हिज स्माइल एंड दैट जॉय द वीवर जो उसमें था, वो आई रियली मिस।
भारती यादव उनके साथ उनका रिलेशनशिप था, तो जब एक बेटा बड़ा होता है, कहते हैं कि माँ के साथ वो अपने हर सीक्रेट शेयर करता है, बाप से थोड़ा डरता है कि कहीं बाप गुस्से में कुछ ना कह दे, तो उन्होंने आपसे शेयर किया था भारती के बारे में, कभी कुछ बात की कि बताया कि माँ देखो एक ऐसी लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ?
हाँ, बिकॉज शुरू से ही मतलब कोएड में था तो लड़कियाँ आती जाती थी, इनफैक्ट हमेशा कहता था कि घर पे तो किसी लड़की को लाना नहीं चाहिए क्योंकि मम्मी के संग गप्पे लगाने बैठ जाती है और मतलब फिर कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो मेरे लिए तो यूज़लेस। बट भारती का ऐसा था कि उसने बताया था, मतलब आई कुड गेस, क्योंकि वो बुकेज़ आते थे, वो बड़े ही होते जा रहे थे, और दिसंबर में उसने मुझे बताया था कि मम्मी मैं तो अभी शादी करने के लिए नहीं सोच रहा था, बट अब उसके फादर उसके लिए ढूंढ रहे हैं तो बताना पड़ेगा, तो मतलब हम एटलीस्ट हम वी शुड बी श्योर कि आपकी ब्लेसिंग्स होंगी। तो मुझे लगा कि मैंने हम लोगों ने एडवाइस किया उसको कि भाई अलग किस्म की फैमिली है, अभी भाई का ऐसा ऐसा हुआ है केस था जैसे कलाल, यहाँ पर एडजस्ट कैसे करेगी? मैं तो कहती थी कि इतने सारे तो पैसे वो फूलों पर खर्च करती है कि तुम्हारी तो पूरी तनख्वाह बुकेज़ में ही जाएगी, तो नहीं मॉम ऐसा नहीं है, उसको पता है एंड ऑल दिस, तो इस तरह से ही टोल्ड मी दिस। देन आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा कि उनको तुम्हारा मतलब क्या परेशानी है तुम्हारे से, अगर है, अगर वैसे तो हम चाहेंगे कि तुम अपने जैसे लड़की ढूंढो जो तुम्हारे घर में अच्छे से फिट हो सके, और फिर उनके परिवार में तुम, तो कहने लगे नहीं वो यहाँ आ रही, मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मगर ही तो उसने बताया था कि मम्मी एक तो वो अपनी कास्ट में शादी करते हैं और दूसरी बात ये कि वो सोचते हैं कि सरकारी अफसर जो हैं वो भिखारी, ही सेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर पॉपर्स। उसका हमेशा यही था कि मम्मी लड़की में आप बताइए क्या खराबी है, तो मुझे भारती में तो क्यों, जितना मैं बहुत कम मिली थी, बिकॉज वो चाहता भी नहीं था कि किसी तरह का कन्फ्रंटेशन हो जाए बिकॉज यू नो बैड वाइब्स, मगर भारती में तो कुछ भी नहीं था, वो जैसे और बच्चे होते हैं वैसे थी। भारती बहुत फैसिनेटेड थी हमारी काइंड ऑफ वे ऑफ लाइफ से, कुछ भी नहीं था, मतलब क्या होता था बर्थडेज पे हम लोग का क्या होता है, चलो सारी फैमिली चारों लोग मिलकर डिनर करने चले गए, या हम लोग हॉलीडे पे निकले तो हम लोग को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का जैसे शौक था चले गए, म्यूजिक चल रहा है, बट वो ये कहता था कि भारती कहती है कि मेरे पास कोई अकाउंटेबल, मतलब मुझे अकाउंट नहीं देना पड़ता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मगर और मैं जिस 5 स्टार या जिस जहाँ चाहूँ वो दिल्ली में या दिल्ली से बाहर मैं अपने फ्रेंड्स को जिसको फैमिली को जिसको चाहूँ ले जाऊँ, बट ठीक है कि मुझे नहीं याद कि हमारे फादर हम 5 लोगों को कभी चाट भी खिलाने ले गए हों, तो शी सेड हमारे घर में फैमिली आउटिंग फादर के संग होती ही नहीं है, और ये चीज़ें उसको बहुत फैसिनेट करती थी, यू नो दैट फैमिली बिट ऑफ इट एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ इट, जो कि हम लोग सोचते हैं कि अरे हम कुछ खास कर ही नहीं रहे. सो दिस इज़ हाउ आई न्यू भारती थ्रू हिम. भाइयों को पता लग चुका था, शी सेड ये भाई मेरे, इसकी शादी होनी है मार्च में, ये हनीमून वगैरह पे जाएगा, फादर इलेक्शन जीत जाएंगे, या भाई लड़ा था इलेक्शन शायद जब, और तब अच्छे मूड में सब होगा, तब वो बताएगी. और उस वो मार्च 6 तक की नौबत ही नहीं आई, सब 16-17 फरवरी को ही हो गया. तो भाइयों से उसको खतरा था कि ये चले जाए यहाँ से बाहर, तब हम फादर को बताएंगे, तब मैं फादर को समझा लूँगी.
अब आपने भी बात उठाई कि सेम कास्ट में शादी करनी थी उसे, और आप भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं नितेश के अपनी कास्ट में ही देखें.
नहीं, कास्ट की बात बिल्कुल नहीं थी हमारे संग. हमारे संग ये था कि एक ये पॉलिटिशियंस और उसके भाई का जसिका लाल केस में इन्वॉल्वमेंट था, तो मुझे ये था कि एक बैड रेपुटेशन वाली पोलिटिकल फैमिली, और फिर पैसा बहुत था. इतना मुझे नहीं मालूम था कि कितने, मतलब बुराई कितनी बुरी हो सकती है या पैसा कहाँ. तो मुझे ये था कि फाइनेंशियली जिस तरह से मैं देखती थी कि पैसे का यूज़, कि भारती चूहा आ गया, उसको गुस्सा आ गया तो उसने उठा के लैपटॉप फेंक दिया चूहे के ऊपर, तो लैपटॉप 3 टुकड़े में हो गया. तो मुझे लगता था कि ये फाइनेंशियल, मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वॉज माई इशू. कास्ट मेरे लिए कभी इशू नहीं थी, मैंने खुद अपनी पसंद से शादी की थी, तो इसलिए पूरा सपोर्ट था. हमारे को सिर्फ ये था कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा हो और फिर क्लीन इमेज की फैमिली हो, तो वो दोनों चीज़ें परेशान करती थी.
क्या चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट रखती थी? ये एक तरह का मैं कहूँगा कि आपके लिए भी एक स्ट्रगल था ये 14 साल जिसके लिए आप लड़ती रहीं जस्टिस के लिए. अब आपको जाके एक आज़ादी मिली है, क्या चीज़ थी जो आपको पुश करे जाती थी?
नितेश के जब मैंने देखा था शरीर मरने के बाद, बुरी तरह से जला हुआ था, इतनी बुरी हालत में था कि एक तो वो नितेश के आसपास भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पहले जब मैं उससे मिली थी वो शादी के लिए तैयार होके गया था अपनी दोस्त की जहाँ से उसको किडनैप. तो कुछ घंटों में हमने 3 दिन बाद देखा, मगर इस कदर अंतर हो गया तो शायद मैं इमीडिएटली तो रिलेट ही नहीं कर पाई कि ये वही. मगर जब मैंने उसको देखा तो मेरा पहला नॉर्मल रिएक्शन ये था कि एक्चुअली फिजिकली मुझे लगा मैं गिरी, बिकॉज माई नीज वेंट वॉबली, लिटरली बिकेम जेली. बट फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, मुझे इस वक्त अगर मैं टूट गई, गिर गई, तो इसको न्याय नहीं मिलेगा. और ये हमेशा दूसरों के लिए आवाज़ उठाने वाला बच्चा था, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बर्दाश्त होता था उसको कि किसी को बुरी तरह से कोई ट्रीट करे, स्पेशली जो कोई कमज़ोर हो. और दूसरी बात ये कि और बच्चों के संग भी ऐसा ही होएगा, तो ये जिसने भी किया है उसको मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, ही शुड नॉट गो स्कॉट फ्री. वो शायद डिसीजन मालूम नहीं मेरा था या ऊपर वाले का था, बट वहाँ से ऊपर वाले ने मुझे प्रोपेल किया, और ये था कि करना है करना है. और कुछ ऐसा होता था कि जिस दिन मुझे लगता था कि अब मुझसे नहीं होगा, उस दिन कुछ ऐसा हो जाता था पॉजिटिव, अगेन मे बी आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस और ए रिचुअलिस्टिक पर्सन, कि मुझे लगता था नहीं. और फिर तो स्टेज ये आ गई थी कि इतना टाइम, इतना इनपुट इसमें लग चुका था फिजिकल एंड अदरवाइज, कि ये था कि ये सब तो वेस्ट नहीं करना है.
ऑनर किलिंग और जिस तरह से आपने कहा कि क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स, ये दो पहलू आपको देखने को मिले नितीश के केस में. क्या आपको लगता है कि अब एक समाज में ही ज़रूरत है कि अब ऑनर किलिंग पर एक सख्त कानून आए?
बिल्कुल, दोनों चीज़ें, ऑनर किलिंग पे सशक्त कानून, कानून तो आए, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे लाइफ टाइम में आ जाएगा, देन आई विल डाई इन पीस. बिकॉज ये तो मतलब हम लोग विकसित और विकास की बात करते हैं, भारत से बाहर निकल के तो देखो किस तरह के कपल्स हैं. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत आइडियल फैमिली सिचुएशंस हैं, मगर मतलब इतना अजीब लगता है कि मैं जाती हूँ और मेरा बेटा है, उसके दोस्त हैं, तो वो पूछते, मतलब दे नो अबाउट माई सन, तो मैं अपने आप से नहीं कहती मगर लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो मतलब दे आर शॉक्ड कि क्यों, समझ ही में नहीं आता लोगों के कि ऐसा क्यों. क्योंकि एक नेशन का लड़का होता है, दूसरे नेशन की लड़की, उन्होंने 3 नेशंस के बच्चे अडॉप्ट किए होते हैं, जो कि सब अलग अलग कलर के हेयर होते हैं, सब होता है. अडॉप्शन इज़ अ ह्यूज बिग थिंग देयर. कोई नहीं सोचता कि मैं फलानी कंट्री का क्यों अडॉप्ट करूँ, ये तो मेरी जात का नहीं. तो वहाँ जब मैं देखती हूँ, ठीक है बुराइयाँ बहुत हैं, फैमिली ब्रेकअप्स हैं, सब हैं, वो जो शायद यहाँ भी आ रहे हैं, मगर हम लोग कहाँ हैं? मतलब हम लोग ये नहीं कि अंधाधुंध हम लोग आँख बंद करके विदेश का फॉलो करना है, मगर कास्ट के लिए मार देना, भाई तुम्हें नहीं पसंद है, तुम बच्चे से नहीं अग्री करते, उसे समझा लो, बहुत करते हो तो भाई मिलना जुलना छोड़ दो. अगर इतना तुम्हारे अंदर दिल है कि तुम बच्चे से तोड़ सकते हो अपना व्यवहार, तो कर लो, मगर मारना ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल प्रिमिटिव है. जो कि कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक ये मिडीवल माइंडसेट की निशानी है कि मेरा ऑनर मेरी लाइफ और दूसरे की ना इज्जत है ना लाइफ है.
नीलम जी, आप आई हमारे साथ PVC हिंदी को, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.
संडे दिन भर में अभी आप सुन रहे थे नीलम कटारा से बातचीत, जिनके बेटे नीतीश कटारा की 14 साल पहले हत्या कर दी गई थी. और अब खेल समाचार। खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है बताने के लिए आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच की बात की जाए तो आज दूसरे दिन विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की करिश्माई पारी का जलवा जारी रहा, जैसे कि कल था। आप देखिए कि कल जब भारत का स्कोर 100 रन था और चेतेश्वर पुजारा आउट हुए थे, सैटनर की गेंद पर बोल्ड हुए थे वो 41 रन बनाकर, तब न्यूजीलैंड की ओर से 36वां ओवर किया जा रहा था और जब आज ये जोड़ी अलग हुई तब न्यूजीलैंड की ओर से वो 148वां ओवर था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 112 ओवर तक इन दोनों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना किया, लोहा लिया, और टेस्ट क्रिकेट में ऐसा पिछले काफ़ी समय से कम देखा गया है। आजकल तो दोनों पारियों में कुल मिलाकर टीमें 112 ओवर खेल पाती हैं और इसका परिणाम ये निकला कि विराट कोहली ने एक कप्तान के रूप में अपने टेस्ट करियर का दोहरा शतक जमाया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय कप्तान हैं। उन्होंने 366 गेंदों का सामना करते हुए 20 चौकों की मदद से 211 रन बनाए। अंततः उनका सफ़र जीतन पटेल की गेंद पर समाप्त हुआ, जब वो विकेट के बिल्कुल सामने थे, गेंद ने उनके पैड पर रेफ्ट किया और उसके बाद अंपायर को कोई असुविधा नहीं हुई अपनी उंगली खड़ी करने में, यानी कि वो LBW आउट हुए। अगर अजिंक्य रहाणे की बात की जाए तो उन्होंने अपनी पारी को बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ाया। हालांकि वो बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है, विकेट में कल अनिमन बाउंस था लेकिन आज बिल्कुल पाटा विकेट हो गई। पाटा विकेट दरअसल भारत में उन विकेट पर कहा जाता है जो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होती है। आप अगर आगे बढ़ गए तो भी स्ट्रोक खेल सकते हैं और अगर बैकफुट पर है तो भी स्ट्रोक खेल सकते हैं और खड़े खड़े भी खेल सकते हैं। और नतीजा ये निकला कि अजिंक्य रहाणे ने अपने टेस्ट करियर का 8वां शतक जमाते हुए 188 रन बनाए। वो ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर विकेटकीपर वाटलिंग के हाथों लपके गए। इस दौरान उन्होंने 381 गेंदों का सामना किया, 18 बेहतरीन चौके और 4 जबरदस्त छक्के लगाए। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि अजिंक्य रहाणे ने आज मैच समाप्त होने के बाद इस सीरीज को किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयारी की, ये सुन लेते हैं। पहले
5 से 6 दिन जो भी मुझे टाइम मिला था मैंने मुंबई में प्रैक्टिस करी थी और स्लो विकेट्स पे खेलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इंडिया में लगभग स्लो विकेट्स होते हैं और स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स होते हैं, तो उस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रहा था। इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि क्योंकि हर जगह खेला हो बट हर जगह एक अलग अलग कंडीशन थे और हर एक विकेट अलग अलग चुनौती दे रहा था। यहाँ पे अगर देखें तो शॉर्ट बॉल कुछ बॉल फंस के आ रहे थे, कुछ बॉल तेज जा रहे थे। कभी कभी टेस्ट क्रिकेट में होता है कि आप रिदम में बैटिंग नहीं करते हो बट आपका एटीट्यूड, आप कैसे डिटरमिन हो, आपका फोकस लेवल कैसा है, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन आप टेक्निक के बारे में सोचते हो। बहुत बार होता है बैट्समैन शॉर्ट बॉल में स्ट्रगल करता है या कभी आउटसाइड ऑफ स्टंप स्ट्रगल करता है तो टेक्निक के बारे में ज़्यादा सोचता है।
तो अजिंक्य रहाणे साफ कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बैटिंग नहीं कर रहे थे, सोच समझ नहीं रहे थे कि गेंद को कैसे खेलना है, बस पहला लक्ष्य उनका था खेलना है। और वाकई इस बात में सच्चाई भी झलकती है क्योंकि एक समय जब मुरली विजय, गौतम गंभीर और चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने जिस तरह से भारत को 300 रन के आंकड़ों के आसपास रोका है तो उसे देखते हुए खतरा था कि अगर इन दोनों में से एक विकेट और जल्दी गिर जाता तो फिर भारत का क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद रोहित शर्मा ने केवल 63 गेंदों पर 3 चौके 2 छक्कों की मदद से नाबाद 51 और रविंद्र जडेजा ने नाबाद 17 रन बनाए। और इसके बाद भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट के नुकसान पर 557 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की। और अब जब आज के दिन का खेल समाप्त हुआ तब न्यूजीलैंड ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 28 रन बना लिए थे। मार्टिन गप्टिल 17 और टॉम लैथम 6 रन बनाकर नाबाद थे, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि न्यूजीलैंड को फॉल ऑन से बचने के लिए अब 358 रन बनाने होंगे।
बहुत शुक्रिया, ये थे आदेश कुमार गुप्त। और खेल समाचारों के बाद कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर वात्सल्य राय से।
BBC समाचार। रिपब्लिकन पार्टी के शीर्ष नेताओं ने महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना की है। ट्रंप इसके लिए माफी मांग चुके हैं। इराक की राजधानी बगदाद में हुए धमाके में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। धमाके की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। हैती में मैथ्यू तूफान में जान गंवाने वाले लोगों के लिए देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। हैती में तूफान की वजह से करीब 900 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण पूर्वी तुर्की में एक पुलिस स्टेशन के करीब हुए कार बम धमाके में 8 तुर्की सैनिकों की मौत हो गई। कई सैनिकों और आम लोगों के घायल होने की भी खबर है। चेचनिया में सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने 8 चरमपंथियों को मार दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी मदद कर रहे थे हेमंत कुशवाहा। अगला प्रसारण घटना चक्र ठीक 1.5 घंटे के बाद। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।